आज के इस डिजिटल युग में ना, जब भी कोई अग्रीमेंट या कोई कानूनी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो सब कुछ बहुत ही साफ सुथरा और नपातुला सा होता है।
हाँ बिल्कुल, मतलब एक पीडीएफ फाइल स्क्रीन पर खुली, आपने एक छोटे से बॉक्स पर क्लिक किया और बस ई साइन हो गया।
सही का, और पलक झपकते ही डील पक्की हो जाती है। कहीं कोई शोर नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, सब कुछ एकदम बाइनरी और बहुत सुरक्षित महसूस होता है।
और सच कहूं तो हमारी आधुनिक कानूनी व्यवस्था का पूरा ढांचा इसी स्पष्टता पर टिका हुआ है। हर शर्त, हर नियम कागजों पर या सर्वर पर दर्ज होता है।
हाँ, या तो हस्ताक्षर हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, बात खत्म।
बिल्कुल, और ये व्यवस्था इंसान को एक तरह की मानसिक शांति देती है ना, कि अगर कुछ गलत हुआ तो अदालतें हैं, वकील हैं, सब कुछ एक तय प्रक्रिया के तहत सुलझा लिया जाएगा।
लेकिन अगर इसी कॉन्ट्रैक्ट या समझौते की अवधारणा को हम समय में थोड़ा पीछे ले जाएं, मतलब करीब 4,000 साल पीछे, प्राचीन मध्य पूर्व की दुनिया में।
ओ, वो तो बिल्कुल ही अलग दुनिया थी।
हाँ
तो वहां ये पूरी प्रक्रिया अचानक बहुत ही खौफनाक और सच कहूं तो भयानक रूप ले लेती है।
उस युग में डिजिटल हस्ताक्षर जैसी तो कोई चीज थी नहीं।
बिल्कुल नहीं, वहां तो खून और पसीने से सौदे होते थे।
जब दो पक्षों के बीच कोई बड़ा समझौता होता था तो जानवरों को बीच से काटा जाता था, खून बहाया जाता था और एक ऐसा नजारा पेश किया जाता था जो सीधे तौर पर जीवन और मृत्यु से जुड़ा होता था।
हाँ, वो कोई कागजी औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक रूह कंपा देने वाली कसम होती थी। उस प्राचीन दुनिया में हर महत्वपूर्ण रस्म के पीछे एक बहुत गहरा और अक्सर बहुत हिंसक अर्थ छिपा होता था।
सही कहा आपने, वहां शब्दों की कीमत खून से चुकाई जाती थी और वादे टूटने का सीधा सा मतलब होता था विनाश।
बिल्कुल,
तो आज के इस स्रोतों की गहरी पड़ताल में हम इसी रहस्यमयी और खौफनाक दुनिया का बहुत गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं।
हाँ, और इसके लिए हमारे पास बहुत ही शानदार स्रोत है।
एकदम सही, मुख्य स्रोत के तौर पर हम डॉक्टर केनेथ मैथ्यूज के उत्पत्ति यानी जेनेसिस के अध्याय 14 और 15 के विस्तृत शोध और नोट्स को अपना आधार बना रहे हैं।
जो कि बहुत ही कमाल का काम है।
आज का हमारा मुख्य उद्देश्य एक 4,000 साल पुरानी घटना के उन पहलुओं को समझना है जो अक्सर ना सामान्य पढ़ाई में छूट जाते हैं। हम दो बिल्कुल विपरीत राजाओं की कहानी देखेंगे, एक ऐसे रहस्यमयी याजक या प्रीस्ट की अचानक एंट्री पर बात करेंगे जिसका कोई इतिहास ही दर्ज नहीं है।
हाँ, और फिर वो भयानक अनुबंध रस्म जिसका जिक्र आपने अभी किया।
बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी घटना के ऐतिहासिक और भौगोलिक संदर्भ को समझना सबसे पहला कदम होना चाहिए।
हाँ, क्योंकि अगर हम उत्पत्ति 14 को देखें तो वहां एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का वर्णन मिलता है। पूर्व के 4 शक्तिशाली राजाओं के एक गठबंधन ने पश्चिमी राजाओं को हरा दिया था।
और इसी उथल पुथल में एक बड़ी घटना घटती है। इब्राहिम का भतीजा लूत और उसका पूरा परिवार युद्ध बंदियों के रूप में पकड़ लिया जाता है।
बिल्कुल, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इब्राहिम कोई पेशेवर सैनिक नहीं था।
हाँ, वो तो एक घुमंतू चरवाहा था।
सही कहा, लेकिन फिर भी उसने अपने घर में पले बढ़े 318 लोगों की एक छोटी सी फौज तैयार की, एक बहुत ही दुस्साहसिक रात का हमला किया और उन शक्तिशाली राजाओं को हराकर लूत को छुड़ा लिया।
सोचिए, युद्ध जीतने के बाद की ये वापसी कितनी तनावपूर्ण रही होगी। एक तरफ जीत की खुशी होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये डर भी तो होगा ना कि उन पराजित राजाओं की सेनाएं कभी भी पलटवार कर सकती हैं।
बिल्कुल, वो खतरा तो हमेशा सिर पर मंडरा रहा था।
और ठीक इसी वापसी के सफर में इब्राहिम की मुलाकात दो राजाओं से होती है। इसे अक्सर स्रोतों में दो राजाओं की कहानी कहा गया है।
हाँ, और ये दोनों मुलाकातें बहुत ही विपरीत हैं।
एकदम, पहला राजा है सदोम का राजा। यह राजा इब्राहिम के पास आता है और उसे एक बहुत ही आकर्षक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि युद्ध की लूट का सारा धन दौलत इब्राहिम रख ले और केवल लोगों को उसे लौटा दे।
मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये इब्राहिम के लिए रातों रात बेतहाशा अमीर बनने का मौका था।
हाँ, कोई भी आम इंसान तो तुरंत हाँ कर देता, लेकिन इब्राहिम इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर देता है।
और इब्राहिम का ये इनकार ना कोई सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं था, ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक और आध्यात्मिक फैसला था।
अच्छा, वो कैसे?
देखिए, इब्राहिम स्पष्ट रूप से कहता है कि वह सदोम के राजा से एक धागा या जूते का फीता तक नहीं लेगा। अगर इब्राहिम वह धन ले लेता तो वह एक तरह से सदोम के राजा का ऋणी हो जाता।
समझ गया, मतलब उस पर एक एहसान हो जाता।
बिल्कुल, उस प्राचीन संस्कृति में किसी राजा से उपहार या लूट का हिस्सा स्वीकार करने का मतलब था उसकी अधीनता या कम से कम उसके साथ एक राजनीतिक गठबंधन स्वीकार करना।
तो इब्राहिम नहीं चाहता था कि भविष्य में सदोम का राजा कभी ये दावा करे कि उसने इब्राहिम को अमीर बनाया। वो अपनी पूरी सुरक्षा और सफलता का श्रेय केवल परमेश्वर को देना चाहता था।
एकदम सही। सदोम का राजा भौतिक संपत्ति, दुनियावी ताकत और शायद एक भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक था जिसे इब्राहिम ने पूरी तरह नकार दिया।
और यहीं से कहानी बहुत मजेदार हो जाती है। इस कहानी में एकदम विपरीत दिशा से एक दूसरा किरदार दाखिल होता है, शालेम का राजा मल्किसिदक।
हाँ, मल्किसिदक का प्रवेश बहुत ही नाटकीय है।
सच कहूँ तो ये मुझे किसी सस्पेंस या थ्रिलर फिल्म के उस रहस्यमय किरदार की तरह लगता है जो ठीक इंटरवल के बाद अचानक पर्दे पर आता है, पूरी कहानी का रुख बदल देता है और बिना अपना बैकग्राउंड बताए बस गायब हो जाता है।
क्या बात है, बहुत ही सटीक उपमा है ये।
लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा राज, या कहें कि सबसे महत्वपूर्ण चाबी, उसी के पास होती है।
हाँ, और डॉक्टर मैथ्यूज के नोट्स इस किरदार पर बहुत गहराई से प्रकाश डालते हैं। मल्किसिदक सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि वो सर्वोच्च परमेश्वर यानी एल एलियोन का याजक भी था।
एल एलियोन।
हाँ, प्राचीन कनान में ये असामान्य नहीं था कि एक राजा ही याजक की भूमिका भी निभाए, लेकिन इब्राहिम के लिए इस व्यक्ति का महत्व बहुत बड़ा था।
बिल्कुल, क्योंकि जब मल्किसिदक इब्राहिम को आशीष देता है और एल एलियोन को स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता कहता है, तो इब्राहिम तुरंत पहचान लेता है कि ये व्यक्ति भी उसी एक सच्चे परमेश्वर की उपासना कर रहा है जिसने इब्राहिम को बुलाया था।
और इब्राहिम की प्रतिक्रिया देखिए, वो युद्ध की लूट का दसवां हिस्सा मल्किसिदक को सौंप देता है।
अरे वाह, मतलब इब्राहिम, जिसे खुद परमेश्वर ने चुना था, जो इब्रानी लोगों का पिता बनने वाला था, वो एक अजनबी याजक के सामने अपना सिर झुका रहा है और उसे अपनी लूट का दसवां अंश दे रहा है।
हाँ, ये मल्किसिदक की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को स्वीकार करने का एक बहुत बड़ा कदम था। इसी घटना को आधार बनाकर हिब्रू किताब का लेखक एक बहुत ही गहरी थियोलॉजी या धर्मशास्त्र प्रस्तुत करता है।
हिब्रू की किताब में मल्किसिदक का काफी जिक्र है।
बिल्कुल, लेखक मल्किसिदक को यीशु मसीह का एक पूर्वाभास या एक टाइप बताता है। प्राचीन साहित्यों में टाइपोलॉजी का मतलब सिर्फ एक तुलना नहीं होता है, बल्कि ये इतिहास में रची गई एक ऐसी पूर्व छवि होती है जो भविष्य की किसी महान सच्चाई की ओर इशारा करती है।
समझ गया।
और हिब्रू भाषा में मल्किसिदक का अर्थ है धार्मिकता का राजा, यानी किंग ऑफ राइचियसनेस। और क्योंकि वो शालेम का राजा है, जो कि बाद में यरूशलेम बना, और शालेम शब्द शालोम से निकला है जिसका अर्थ है शांति, तो वो शांति का राजा भी हुआ।
धार्मिकता का राजा और शांति का राजा, ये तो सीधे तौर पर भविष्य में आने वाले मसीहा या यीशु के चरित्र का ही पूरा खाका खींचा जा रहा है।
बिल्कुल।
डॉक्टर मैथ्यूज के नोट्स में मुझे एक और बात बहुत दिलचस्प लगी कि मल्किसिदक की कोई वंशावली नहीं दी गई है। मतलब उत्पत्ति की किताब जो पूरी तरह से वंशावलियों पर ही टिकी है, ये बताने पर कि कौन किसका पिता था और कौन कब मरा, वहां ये आदमी बिना किसी माता पिता, बिना किसी जन्मी या मृत्यु के रिकॉर्ड के बस यूं ही प्रकट हो जाता है।
हाँ, और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि मल्किसिदक कोई ईश्वर या प्राणी या स्वर्गदूत था।
तो फिर इसका क्या मतलब है?
साहित्यिक और धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से वंशावली का जानबूझकर छोड़ दिया जाना उसे एक ऐसे याजक का प्रतीक बनाता है जिसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है। वो एक अनंत याजक प्रणाली को दर्शाता है।
अनंत याजक प्रणाली।
हाँ, हिब्रू का लेखक इसकी तुलना इसराइल की हारून वाली याजक प्रणाली से करता है। हारून की याजक प्रणाली पूरी तरह से वंशावली और शारीरिक नियमों पर आधारित थी, और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी मृत्यु।
हाँ, क्योंकि हर याजक को एक दिन मरना ही होता था और उसकी जगह किसी और को लेनी पड़ती थी।
बिल्कुल, वे जो पशु बलि चढ़ाते थे वो पाप का कोई स्थायी समाधान नहीं था, इसलिए उन्हें हर दिन हर साल बार बार बलिदान देने पड़ते थे।
लेकिन मल्किसिदक की प्रणाली उस मौत और बार बार के बलिदान की सीमा से परेशान कर रही थी। और एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ, इसराइल के इतिहास में बाद में जो नियम बने उनके अनुसार राजा हमेशा यहूदा के गोत्र से होते थे, जैसे दाऊद।
हाँ।
और याजक हमेशा लेवी के गोत्र से होते थे, जैसे हारून। मूसा की व्यवस्था के तहत कोई एक व्यक्ति दोनों पदों पर एक साथ नहीं बैठ सकता था।
सही कहा।
लेकिन मल्किसिदक और उसके प्रतीक के रूप में यीशु दोनों ही राजा और याजक की भूमिकाओं को एक साथ निभाते हैं।
और यही वो बिंदु है जो मल्किसिदक को इतना खास बनाता है। वो व्यवस्था के आने से पहले राजा और याजक के इस शक्तिशाली संयोजन को स्थापित करता है। इब्राहिम इस महान याजक से आशीष पाता है और सदोम के राजा की दुनियावी संपत्ति को पूरी तरह ठुकरा देता है।
खैर, इस शानदार जीत और इस तरह के महान आध्यात्मिक अनुभव के बाद किसी को भी लगेगा कि इब्राहिम तो सातवें आसमान पर होगा, सब कुछ उसके पक्ष में जा रहा था। लेकिन अध्याय 15 की शुरुआत एक बिल्कुल अलग ही माहौल में होती है।
हाँ, वहाँ का माहौल बहुत भारी है।
इब्राहिम के मन में एक गहरा डर और तनाव है, उसे भविष्य की चिंता खाई जा रही है।
देखिए, युद्ध की एड्रेनालिन जब खत्म होती है ना, तो असल वास्तविकता सामने आती है। इब्राहिम ने अभी अभी पूर्व के चार शक्तिशाली राजाओं को अपना दुश्मन बनाया है और उसने सदोम के राजा का धन ठुकरा कर अपने वित्तीय सुरक्षा का भी एक बड़ा मौका छोड़ दिया है।
हाँ, वो एक विदेशी जमीन पर है और सबसे बड़ी बात, उसके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है।
बिल्कुल। और इसी डर के बीच परमेश्वर इब्राहिम को एक दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे इब्राहिम, मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ।
बहुत ही खूबसूरत शब्द है ये।
हाँ, और यहाँ डॉक्टर मैथ्यूज एक बहुत ही सुंदर भाषाई खेल या वर्ड प्ले की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। अध्याय 14 में मल्किसिदक ने परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहा था कि परमेश्वर ने इब्राहिम के दुश्मनों को बचाया या उसके हाथों में सौंप दिया।
अच्छा।
हाँ, और मूल हिब्रू में यहाँ जिस धातु या रूट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, अध्याय 15 में परमेश्वर खुद को उसी शब्द से जोड़कर इब्राहिम की ढाल बताते हैं।
अरे वाह, मतलब परमेश्वर उसे आश्वस्त कर रहे हैं कि उसे किसी सदोम के राजा के धन या किसी भी सैन्य गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है।
बिल्कुल।
लेकिन इब्राहिम का डर तो शारीरिक सुरक्षा से ज्यादा एक बहुत ही बुनियादी मानवीय जरूरत को लेकर था। वो कहता है, हे प्रभु, तू मुझे क्या देगा? मेरे तो कोई संतान ही नहीं है और मेरे घर का वारिस दमिश्क का एलीजर होगा।
हाँ, उसकी चिंता बहुत स्वाभाविक थी। पर एक मिनट रुकिए, यहाँ ये एलीजर का जिक्र अचानक कहाँ से आ गया? इब्राहिम अपने ही नौकर को अपना वारिस क्यों मान रहा है? होता क्या है कि प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययन, विशेषकर सुनजी पट्टिकाओं से हमें प्राचीन हूरियन संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। उस समय के कानूनी और सामाजिक नियमों के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई जैविक पुत्र नहीं होता था, तो वह अपने एक वफादार नौकर या किसी बाहरी व्यक्ति को कानूनी रूप से गोद ले सकता था।
हाँ, तो ये एक लीगल प्रोसेस था।
बिल्कुल। गोद लिया वह व्यक्ति बुढ़ापे में उस जोड़े की देखभाल करता था, उनके अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करता था और बदले में उनकी पूरी संपत्ति का उत्तराधिकारी बन जाता था। तो इब्राहिम यहाँ कोई विद्रोही बात नहीं कर रहा था, वो बस अपने समय की कानूनी व्यवस्था के हिसाब से एक प्रैक्टिकल समाधान निकालने की कोशिश कर रहा था।
हाँ, इब्राहिम शायद ये सोच रहा था कि परमेश्वर का वादा इसी तरह किसी कानूनी विकल्प या प्लान बी के जरिए पूरा हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर उस प्रैक्टिकल समाधान को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं।
एकदम।
परमेश्वर उसे तंबू से बाहर मिल जाते हैं, आसमान के तारे दिखाते हैं और कहते हैं कि कोई गोद लिया हुआ नौकर नहीं, बल्कि उसका अपना जैविक पुत्र ही उसका वारिस होगा और उसके वंशज इन तारों की तरह अनगिनत होंगे।
और ठीक यहीं पर हम ना सिर्फ उत्पत्ति की किताब बल्कि पूरे बाइबल के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर पहुंचते हैं, उत्पत्ति 15 की 6 आयत। इब्राहिम ने यहोवा पर विश्वास किया और उसने इसे उसके लिए धार्मिकता गिना।
सच में ये एक ऐसा वाक्य है जिसने सदियों तक धर्मशास्त्रियों और विचारकों को प्रेरित किया है। प्रेरित पौलुस रोमियो के अध्याय 4 में इस आयत का पूरा एक कानूनी और आध्यात्मिक विश्लेषण करते हैं ना।
हाँ, और पौलुस इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इब्राहिम को ये धार्मिकता मूसा की व्यवस्था आने से लगभग 400 साल पहले ही मिल गई थी। यहाँ तक कि खतना की रस्म, जो उत्पत्ति 17 में आती है और जो बाद में यहूदी पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक बनी, वो भी इस घटना के काफी बाद हुई थी।
पौलुस का ये तर्क बहुत शक्तिशाली है। मतलब अगर इब्राहिम को खतना होने से पहले और नियम कानून आने से पहले ही धर्मी घोषित कर दिया गया था, तो इसका मतलब है कि इंसान का परमेश्वर के सामने सही ठहराया जाना किसी रस्म को पूरा करने या नियमों को मानने का परिणाम बिल्कुल नहीं है।
बिल्कुल नहीं।
लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है, अगर कोई इब्राहिम की पूरी कहानी पढ़े तो साफ दिखता है कि वो कोई परफेक्ट इंसान तो था नहीं।
हाँ, गलतियां तो उसने बहुत की थी।
बिल्कुल। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोला, वो कई बार डरा, आगे चलकर उसने हागरा के साथ भी एक बहुत बड़ी गलती की। तो फिर इतने सारे दागों के बावजूद परमेश्वर ने उसे अचानक धर्मी कैसे मान लिया?
देखिए, धार्मिकता गिने जाने की इस अवधारणा को आधुनिक कानूनी शब्दावली के नज़रिए से नहीं, बल्कि प्राचीन बही खाते या क्रेडिट प्रणाली के रूप में समझना होगा।
क्रेडिट प्रणाली?
हाँ, जब ये कहा जाता है कि परमेश्वर ने इसे धार्मिकता गिना या क्रेडिट किया, तो इसका मतलब ये नहीं था कि इब्राहिम ने रातों रात एक पाप रहित या नैतिक रूप से पूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया था। इब्राहिम के कर्मों में अभी भी कमियां थीं। लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम के उस गहरे भरोसे को कि परमेश्वर असंभव को भी संभव कर सकता है, उसके खाते में धार्मिकता के रूप में जमा कर दिया।
तो मतलब ये धार्मिकता इब्राहिम के अपने कर्मों की कमाई नहीं थी, बल्कि परमेश्वर के वादे पर उसके अटूट भरोसे का परिणाम थी।
एकदम सही। और डॉक्टर मैथ्यूज इस बिंदु को और स्पष्ट करने के लिए प्रकाशित वाक्य 13:8 का संदर्भ देते हैं, जहां यीशु को वो मेमना कहा गया है जो जगत की उत्पत्ति के समय से वध किया गया है।
आह, ये बहुत गहरी बात है।
इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के लिए समय एक सीधी रेखा नहीं है। मसीह के बलिदान का मूल्य और उसका प्रभाव सृष्टि की शुरुआत से ही मौजूद था। इसलिए इब्राहिम को उसी अंतिम बलिदान के आधार पर धर्मी ठहराया जा सका, भले ही वो बलिदान ऐतिहासिक रूप से सदियों बाद होने वाला था।
समझ रहा हूँ।
पुराने और नए नियम दोनों में उद्धार का तरीका कभी नहीं बदला। इंसान हमेशा परमेश्वर के वादे पर विश्वास करने से ही बचाया गया है, क्योंकि अपने दम पर वो कभी नियमों का पूरी तरह पालन कर ही नहीं सकता।
ये समझ में आता है कि विश्वास के आधार पर ये वादा तय हो गया, लेकिन उस प्राचीन दुनिया में जब दो पक्षों के बीच कोई इतना बड़ा वादा या अनुबंध होता था, तो उसे कानूनी रूप से पक्का कैसे किया जाता था?
हाँ, ये एक बड़ा सवाल है।
और यहीं से हमारी आज की कहानी उत्पत्ति 15 के उस हिस्से की ओर मुड़ती है जो आधुनिक मानसिकता के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और मैं तो कहूंगा खौफनाक है।
बिल्कुल, ये रस्म प्राचीन मध्य पूर्व की सुजरिन वासल संधियों या अनुबंधों की याद दिलाती है, जहां एक शक्तिशाली राजा और एक कमजोर राजा या प्रजा के बीच समझौता होता था। परमेश्वर इब्राहिम को निर्देश देते हैं कि वो एक बछिया, एक बकरी, एक मेढ़ा, एक पंडुक और एक कबूतर लाएं। इब्राहिम उन बड़े जानवरों को बीच से दो टुकड़ों में काटता है और उन कटे हुए टुकड़ों को एक दूसरे के सामने रखता है, ताकि उनके बीच से गुजरने का एक संकरा रास्ता बन जाए।
पता है, यर्मिया 34 में भी एक ऐसी रस्म का जिक्र आता है। उस समय जब दो पक्ष कोई महत्वपूर्ण अनुबंध करते थे, तो वे दोनों उन कटे हुए जानवरों के बीच बने रास्ते से गुजरते थे।
हाँ, और ये केवल एक औपचारिकता नहीं थी।
बिल्कुल नहीं, ये एक तरह का सेल्फ इम्प्रिकेशन या खुद को श्राप देने की रस्म थी। खून और कटे हुए मांस के बीच से गुजरते हुए वे मूल रूप से ये घोषणा कर रहे होते थे कि अगर मैंने इस वादे को तोड़ा, अगर मैंने अपनी शर्तें पूरी नहीं की, तो मेरा हश्र भी इन जानवरों जैसा हो, मुझे भी ऐसी ही चीर दिया जाए। ये एक भयानक कसम थी।
और इस रस्म की गंभीरता इसी बात में थी कि इसमें पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता था। लेकिन डॉक्टर मैथ्यूज जिस सबसे बड़े ट्विस्ट की ओर ध्यान खींचते हैं, वो ये है कि जब सूरज ढलने लगता है, तो इब्राहिम उन जानवरों के बीच से नहीं गुजरता।
अरे, तो फिर क्या होता है?
इसकी बजाय इब्राहिम एक बहुत ही गहरी और भयानक नींद में चला जाता है। मूल हिब्रू में यहाँ जिस शब्द तरेदे माह का इस्तेमाल हुआ है, ये वही शब्द है जो उत्पत्ति अध्याय 2 में इस्तेमाल हुआ था, जब परमेश्वर ने हव्वा को बनाने के लिए आदम को एक गहरी नींद में डाल दिया था।
इसका मतलब है कि ये कोई सामान्य थकान वाली नींद नहीं थी, ये एक ईश्वरीय हस्तक्षेप था जिसने इब्राहिम को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया।
बिल्कुल।
लेकिन अगर अनुबंध दोनों पक्षों के बीच है, तो नियम के अनुसार तो इब्राहिम को भी उन टुकड़ों के बीच से गुजरना चाहिए था ना, उसे भी वो कसम खानी चाहिए थी। लेकिन इब्राहिम तो सो रहा है, वो इस पूरी प्रक्रिया में एक दर्शक मात्र बनकर रह गया।
और फिर अंधेरा होने पर जो होता है, वो इस पूरे अध्याय का चरम बिंदु है। परमेश्वर एक धुएं वाले बर्तन और जलती हुई मशाल के रूप में प्रकट होते हैं। धुआं और आग बाइबल में अक्सर परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाते हैं।
हाँ, ठीक वैसे ही जैसे बाद में सिनाई पर्वत पर या जंगल में बादल और आग के खंभे के रूप में देखा गया था।
सही कहा। और केवल परमेश्वर अपने उस धधकते हुए रूप में उन कटे हुए टुकड़ों के बीच से अकेले गुजरते हैं।
तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर इसे आज के संदर्भ में एक उपमा के जरिए समझा जाए, तो ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे कोई आम इंसान किसी बहुत बड़े अरबपति निवेशक के साथ कई 100 करोड़ का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हो।
बहुत दिलचस्प उपमा है, बताइए।
हाँ, और ये एक बिजनेस के लिहाज से तो पूरी तरह अतार्किक और पागलपन भरा फैसला लगेगा ना।
बिल्कुल, कोई ऐसा क्यों करेगा?
लेकिन ये उपमा उस रस्म के मूल अर्थ को बहुत अच्छे से पकड़ती है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो परमेश्वर सर्वज्ञ हैं। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इब्राहिम और उसके बाद आने वाली उसकी तमाम पीढ़ियां भविष्य में इस अनुबंध की शर्तों को तोड़ देंगे।
इंसान कभी भी अपनी तरफ से पूरी तरह वफादार नहीं रह पाएगा। इतिहास गवाह है कि बाद में इसराइलियों ने बार बार वो वाचा तोड़ी, इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को उस रास्ते से गुजरने ही नहीं दिया। परमेश्वर अकेले उस खौफनाक रास्ते से गुजरे।
बापरे,
इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ ये था कि इस वादे को पूरा करने की 100% जिम्मेदारी परमेश्वर ने खुद ली, और अगर भविष्य में इंसान की तरफ से अनुबंध टूटता है तो उसका पूरा दंड, वो मौत और वो भयानक श्राप भी परमेश्वर अकेले अपने ऊपर लेंगे।
ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। मतलब परमेश्वर अपनी ही प्रतिष्ठा, अपने ही नाम को दाव पर लगा रहे थे। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक तरफा गारंटी थी जो पूरी तरह से परमेश्वर के अपने अटल चरित्र पर निर्भर थी, न कि इब्राहिम की बदलती हुई काबिलियत पर।
और यही वो जगह है जहाँ उत्पत्ति की ये प्राचीन कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं रह जाती, बल्कि ये अनुग्रह यानी ग्रेस की सबसे शक्तिशाली तस्वीर बन जाती है।
बिल्कुल।
इब्राहिम ने आगे चलकर कई गलतियां की, उसका विश्वास डगमगाया, लेकिन वो वाचा या अनुबंध कभी रद्द नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस वाचा की नींव में इब्राहिम का परफेक्शन नहीं बल्कि परमेश्वर की वफादारी थी।
आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये कहा जा सकता है कि सुनने वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि 4000 साल पुरानी ये घटनाएं महज धूल खाई हुई प्राचीन कथाएं नहीं हैं। ये आज भी भरोसे, वादे और वफादारी की परिभाषा को एक नया आयाम देती हैं।
हाँ, आज हमने देखा कि कैसे भू राजनीतिक ओथल पुथल के बीच इब्राहिम ने दुनिया की संपत्ति को ठुकरा कर एक अदृश्य वादे पर भरोसा किया,
और कैसे मल्किसिदक के रूप में एक रहस्यमय याजक ने एक अनंत और श्रेष्ठ व्यवस्था की झलक दिखाई,
और अंत में कैसे एक खून से सनी भयानक रस्म ने ये साबित किया कि परमेश्वर इंसान की विफलताओं का बोझ खुद उठाने को तैयार है।
लेकिन उत्पत्ति की यात्रा यहाँ रुकती नहीं है। इब्राहिम का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ था और उसका विश्वास लगातार परखा जा रहा था।
बिल्कुल। अगली बार के स्रोतों में हम उत्पत्ति के अध्याय 16 और 17 पर नजर डालेंगे। वहाँ एक बिल्कुल नई चुनौती सामने आती है। इब्राहिम और सारा का धैर्य जवाब दे जाता है।
हाँ, हागरा और इस्माइल की एक बहुत ही जटिल कहानी शुरू होती है और फिर खतना के उस रस्म की शुरुआत होती है जिसका पौलुस ने जिक्र किया था।
ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जब इंसान परमेश्वर की योजना में अपनी ओर से हस्तक्षेप करके मदद करने की कोशिश करता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं।
अगली चर्चा भी निश्चित रूप से बहुत ही गहरी और रोमांचक होने वाली है। लेकिन आज इस पड़ताल को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहूंगा।
जरूर।
जरा सोचिए, अगर परमेश्वर ने उस अंधेरी रात में उन कटे हुए जानवरों के बीच अकेले चलकर इंसानी विफलताओं का सारा बोझ और सारा श्राप भविष्य के लिए अपने ऊपर लेने का फैसला कर लिया था, तो ये विचार हमारे व्यक्ति का जीवन को कैसे बदल सकता है? खास तौर पर उन पलों में जब हम खुद से निराश होते हैं, जब हम अपने ही किए गए वादे तोड़ देते हैं या अपनी ही उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते। क्या परमेश्वर का ये एक तरफा अटल वादा हमें अपनी विफलताओं और कमजोरियों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की आजादी नहीं देता?
हाँ, क्या ये हमें खुद को क्षमा करने और परमेश्वर की उस अटूट वफादारी पर फिर से भरोसा करने की हिम्मत नहीं देता?
बिल्कुल। इस विचार पर गहराई से मनन किया जा सकता है। आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर एक नए अध्याय के साथ मुलाकात होगी।